बंगाल के लोग हैं तो बंगाल को ज्यादा बढ़ावा, आंध्र प्रदेश के लोग हैं तो बस तेलुगु देशम पार्टी ही सब कुछ बने संसार में, वो ही सब कुछ है। ऐसा माहौल बनता चला जा रहा है।
द पीपल ऑफ बंगाल वॉन्ट टू गिव मोर इंसेंटिव टू दियर स्टेट, द पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश विश that only Telugu Desam Party becomes everything in the world. They precisely consider it as everything. Such an atmosphere is continuously getting created.
राज्यवाद के आधार पर बहुत अंदर अंदर आग भड़क भड़क रही है। ऐसे ही जितनी इस छोटे से देश में भाषाएं हैं और भाषाओं की संख्या है, इतना दुनिया की किसी भी देश में इतनी भाषा नहीं।
On the basis of statehood, a lot of fire is kindling from within. In the same way, in such a small country, as many number of languages are present, that many languages do not flourish in any country in the world.
एक भारत देश ही है, यहाँ सब तरह की भाषाएं पढ़ रही
हैं. It is only in the country of India. Where all types of languages are flourishing.
जितने राज्य उतनी भाषाएं, और भाषाओं को लेकर के आपस में झगड़ा भी बहुत हो रही
है। As many states are present, that many languages are present, and a lot of fights are taking place among each other on account of language.
तमिलनाडु में चले जाइए और वहाँ हिंदी बोलना शुरू करिए, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, हिंदी को वहाँ ठीक ही नहीं समझते।
गो टू तमिलनाडु एंड स्टार्ट स्पीकिंग इन हिंदी देयर, नो वन विल सपोर्ट यू ओवर देयर, दे डू नॉट कंसीडर इट एज प्रॉपर।
हिंदी भाषा कोई वहाँ पढ़ता ही नहीं, सब तमिल को प्रेफरेंस देते हैं।
नो वन रीड्स द लैंग्वेज हिंदी ओवर देयर, एवरीवन गिव्स प्रेफरेंस टू तमिल देयर।
एक मलयालम ऐसा है दक्षिण भारत की भाषाओं में, वो देश दक्षिण भारत के राज्यों में जहाँ सब प्रकार की भाषाएं जो है पढ़ाई जाती है, क्योंकि एजुकेटेड लोग वहाँ जाते हैं।
Malayalam, Kerala is one such state from among the South Indian states where all types of languages are taught. It is since the educated people are more in number there.
लेकिन फिर भी मलयालम भाषा को बहुत महत्व दे रहे हैं। हिंदी भाषा को वहाँ भी मलयालम माना केरल में भी उतना महत्व नहीं।
But still, they are giving more importance. To the Malayalam language, the Hindi language doesn't have so much of importance even in Kerala.
कि उनकी बुद्धि में ही नहीं है कि भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तो हिंदी भाषा में बोलता है या मलयालम में बोलता है या कन्नड़ में बोलता है या तमिल भाषा में बोलता है।
Since it is not there in their intellect that when God comes in this world, does he speak in the language of Hindi? Or in Malayalam, or in Kannad, or in the language of Tamil.
जब उनको ये ज्ञान मिलेगा तो वो समझेंगे इस भारत की मुख्य भाषा अभी भी ज्यादा से ज्यादा लोगों में बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। हैं तो बीसियों भाषाएं हिंदुस्तान में, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो जनगण की भाषा है वो कौन सी भाषा है भारतवर्ष में, कौन सी भाषा है?
When they get this knowledge, they will understand that the main language of India even now is Hindi, which is a language which is spoken among most of the people. As such, there are scores of languages in India, but which is a language spoken by the common public in the Indian region? Which is the language? It is Hindi.
तो जो हिंदी भाषा है जन जन की भाषा है उसी में आकर के भगवान बोलेगा ना। हिंदी ऐसी भाषा है, भगवान की भाषा, उसका प्रूफ है।
So, God will come and speak in the Hindi language, the language of the commoners, isn't it? Hindi is such a language, the language of God. It has a proof.
भगवान आकर के जिस भाषा में बोलेगा वो भाषा सबसे सहज होगी, लिखने में भी सहज, पढ़ने में भी सहज.
The language in which God will come and speak, it will be simplest of all. It will be easy even to write it. It will be easy even to read it.
सुनने में भी बोलने में भी सहज और समझने में भी सहज, वो ही भगवान की भाषा होगी.
It will even be easy to listen and speak it, and it will even be easy to understand it. Particularly, that can be the language of God.
जैसे भगवान आकर के जो ज्ञान सुनाता है, एक तो मनुष्यों का ज्ञान होता है. मनुष्य आज की दुनिया में जो ज्ञान दे रहे हैं वो डॉक्टरों का ज्ञान होता है, डॉक्टरी के पढ़ाई के कॉलेज होते हैं.
Just as the knowledge which God comes and gives. In fact, one type is the knowledge of the human beings. The knowledge which the human beings are given in this world. There is a knowledge of doctors. There are colleges where one studies medicine.
मनुष्य आकर के जो ज्ञान दे रहा है अभी इस सृष्टि में, मनुष्यों का ज्ञान में वकालत का ज्ञान होता है, जज बनते हैं. ऐसे ही आज की दुनिया में इंजीनियर्स बनते हैं.
In the knowledge that man is given after coming into this world, in the knowledge of human beings, there is a knowledge of law. They become judges. In the same way, in today's world, people become engineers.
इंजीनियर्स जो हैं, उनकी भी पढ़ाई है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे कॉलेजेस हैं, वो भी मनुष्यों की पढ़ाई है. लेकिन भगवान आकर के जो पढ़ाई पढ़ाता है वो इतनी सिंपल पढ़ाई है, उसका सार और उसका तंत्र जो है वो 7 दिन के अंदर समझाया जा सकता है.
The studies of engineering is also taught. They too have very big and huge colleges. Even that is a teaching of human beings. But the lessons which God comes and teaches are so very simple that the essence of it can be understood in 7 days.
कोई गरीब हो, कोई रईस हो, समझदार कोई 8, 10, 15 वर्ष का बच्चा हो या कोई बूढ़ा हो, कोई बीमार हो या कोई स्वस्थ व्यक्ति हो, हर एक को भगवान का जो ज्ञान है वो बुद्धि में बैठ सकता है. लूला लंगड़ा हो या शरीर से स्वस्थ.
Whether one is poor or rich, someone is an intelligent 8 to 10 or 15-year-old child, or whether one is an old man, whether one is ill or healthy, the knowledge of God can settle in each one's intellect, whether one is lame or is in good health.
भगवान का ज्ञान सब ले सकते हैं और सिर्फ 7 दिन में उसका सार समझ सकते हैं. इतना सहज ज्ञान है भगवान का और उसकी फीस भी कुछ नहीं.
Everyone can take the knowledge of God and can understand its essence just in 7 days. The knowledge of God is so simple and it doesn't at all have fees.
भगवान आकर के जो ज्ञान सुनाता है, आचार्य रजनीश की तरह ऐसे शिविर नहीं होते हैं जहाँ पैसा लिया जाए. अगर पैसा लिया जा रहा है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में, तो समझ लो वहाँ वो दूसरे दूसरे धर्म के जो कन्वर्ट हुई आत्माएं हैं वो वहाँ घुस गई, इसलिए वो पैसे की मांग नहीं कर रही.
इन द नॉलेज विच गॉड कम्स एंड गिव्स, कैंप्स are not kept like that of Acharya Rajneesh, where money is taken. In case if money is being taken in the Brahma Kumari's godly university, Then consider that the souls who have got converted to different religions have entered there. That's why they are demanding money.
अभी भी जो ईश्वर का सत्य ज्ञान है वो जहां कहीं भी दिया जा रहा होगा वहां पैसे की मांगने का कोई सवाल नहीं हो सकता.
Even now, the place where God's true knowledge is being given, there can't be any question of demanding money.
क्योंकि भगवान आकर के ज्यादा खर्च नहीं कराता, कम खर्च में बड़े से बड़े धर्म की स्थापना करा देता.
It is since God doesn't come and cause a lot of expenditure. At the minimum expense, He causes the establishment of the biggest religion.
एक मुरली में तो यहाँ तक बोला हुआ है. तुम्हारे सनातन धर्म की असली जो स्थापना है, उस स्थापना में 50 लाख भी खर्च नहीं होता.
In one murli, it has been said to this extent that in the real establishment of your Sanatan religion, even 50 lakhs is not spent.
इतना सस्ता है ये धर्म की धारणा और इतनी ऊंची पढ़ाई है जिसे ईश्वर की पढ़ाई कहा जाता है, इसलिए इसका नाम दिया है गॉडली पढ़ाई.
The conceptions of this religion are so cheap and it is such a superior studies that is known as godly studies. That is why it has been named godly studies.
और दुनिया में जो पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, चाहे वो पीएचडी की पढ़ाई हो, चाहे वो डीलिट की पढ़ाई हो, चाहे वो कोई भी तबके की पढ़ाई हो, तो सब पढ़ाइयों का नाम दे दिया है डॉगली पढ़ाई.
Whereas the studies that are taught in the world, whether it is the study of engineering, or whether it is a study of PhD, or whether it is a study of D.Lit, whichever level of study it may be, all those studies have been named as Dogli studies.
50 लाख.
50 लाख भी खर्चा नहीं.
उतना भी खर्चा नहीं जो असली धर्म की स्थापना होती है. माना असली जो संगठन बनना है उसमें 50 लाख भी खर्चा नहीं होता.
Someone asked, did you say 50 lakhs or 50 crores? 50 lakhs. Even 50 lakhs will not be spent. Even that much won't be spent in the establishment of the real religion. It means that in the making of the real gathering, even that much will not be spent.
मुरली में बोला है, मुरली का बाकी बोल रहा हूँ. जो ब्रह्मा के मुख से मुरली बोली है उसकी बात बता रहा हूँ. अभी तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जो एक एक सेंटर बनाया जा रहा है, एक एक बड़ा हाल बनाया जा रहा है, उसी में करोड़ों रुपया खर्च हो रहे हैं.
It has been said so in the Murli. I am telling the version of the Murli. The Murli that was narrated through the mouth of Brahma. I am quoting that. Now in the Brahma Kumari ashram, crores of rupees are being spent just on each center that is being built, each hall that is being built.
समझा जा सकता है कि भगवान गरीबों के लिए आता है या रईसों के लिए आता है, साहूकारों के लिए आता है. भगवान गरीब निवास कहा जाता है या साहूकार निवास कहा जाता है, क्या कहा जाता है?
It can be understood as to whether God comes for the poor or for the rich, for the wealthy. Is God said to be the one who showers kindness on the poor, garib nivas, or is He said to be the one who showers kindness on the rich, sahukar nivas? What is He known as?
Garib nivas कहा जाता है, इसलिए गरीबों को आकर के पहले उठा रहा है. अगर कोई रईस साहूकार उठते भी हैं, तो असली ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाते, फिर भी वो ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पीछे लग जाते हैं.
he is said to be Garib Nivas. Hence, he comes and lives a poor first. Even if some rich or wealthy come out, then they are not able to grasp the real knowledge. They will still go behind the Brahma Kumar or Kumari.
देहधारियों के पीछे लग जाएंगे ईश्वरीय ज्ञान जो मुख से निकला मुख बनने वाली ब्राह्मण नहीं बन पाते जो मुख वंशावली बनते हैं उनकी तादाद ही बहुत थोड़ी है
दे विल गो बिहाइंड द बॉडीली बीइंग्स द नॉलेज दैट कम्स आउट ऑफ द माउथ दे विल नॉट बी एबल टू बिकम मुख वंशावली माउथ बॉर्न ब्राह्मण्स द क्वांटिटी of those who become Mukhvanshavali is very little.
So, aisa shrestha gyan jo Bhagwan aakar ke is samay de raha hai teen murtiyon ke dwara. Brahma ki murti, Shankar ki murti aur Vishnu ki murti jo naye sangathan ki palna karegi.
Therefore, God has come and is giving such a superior knowledge through the three figures through Murtis, the figure of Brahma, the figure of Shankar, and the figure of Vishnu, who will give sustenance to the new gathering.
जिस नए संगठन का नाम शास्त्रों में दिया हुआ है, अंग्रेजों के शास्त्रों में उसका नाम दिया है paradise, मुसलमानों के शास्त्रों में उसका नाम दिया है जन्नत, और हिंदुओं के शास्त्र में उसका नाम दिया है बैकुंठ.
The new gathering which has been named in the scriptures. In the scriptures of the English, it has been named paradise. In the scriptures of the Muslim, it has been named Jannat. And in the Hindu scriptures, it has been named Vaikunth.
वो नए संगठन की पालना जिस विष्णु की तीसरी मूर्ति के द्वारा होनी है, वो मूर्ति अभी भी प्रत्यक्ष होने का टाइम है.
The third figure, that is Vishnu, through whom the new gathering has to receive sustenance. There is still time for the revelation of that figure.
तीन मूर्तियां हैं तीनों मूर्तियों का अपना अपना टाइम निश्चित है अपना अपना कार्य करने का जैसे और दुनिया के धर्म पिताएं हुए हैं उन्होंने 100 साल के अंदर अपने धर्म की स्थापना की
There are three figures and all the three figures have time fixed for doing their own duties, just as there have been the other religious fathers, they established their religion within a period of 100 years.
चाहे इब्राहिम हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे क्राइस्ट हो, चाहे गुरु नानक हो, 100 साल से ज्यादा किसी ने अपने धर्म की स्थापना का टाइम नहीं लिया ऐसे ही भगवान भी जब इस सृष्टि पर आता है तो 100 वर्ष के अंदर पूरी स्थापना सनातन धर्म की करके चला जाता है
Whether it was Abraham or Buddha, whether it was Christ or Guru Nanak, no one took more than 100 years for the establishment of their own religions. Similarly, even when God comes on this world, He does the complete establishment of the Sanatan religion within 100 years and then leaves.
उन 100 वर्षों में तो 70 वर्ष तो अभी पूरे होने जा रहे हैं क्या माने दो मूर्तियों का कार्य पूरा हो चुका ब्रह्मा की मूर्ति और शंकर की मूर्ति अब तीसरी मूर्ति सामने आने वाली है
इन 200 years 70 years आर अबाउट टू बी कंप्लीटेड नाउ व्हाट इट मीन्स that the work of the two figures has been completed. That is the figure of Brahma and the figure of Shankar. Now the third personality is about to come in the front.
जो तीसरी मूर्ति और उसके फॉलोअर्स भारत में बहुत ऊंची दृष्टि से देखे जाते हैं तीन संप्रदाय भारत के प्रसिद्ध हैं भारतीय शास्त्रों में भी एक ब्रह्म समाजी दूसरे वैष्णव पंथी
दैट थर्ड फिगर एंड इट्स फॉलोअर्स आर ट्रीटेड विद मच रिस्पेक्ट इन इंडिया थ्री कम्युनिटीज are famous in India. Even in the Indian scriptures, one is a Brahma Samaji, the second is a Vaishnav Panti.
विष्णु के फॉलोअर्स और तीसरे शैव शैव संप्रदाय वाले शाक्त संप्रदाय जिनको कहते हैं. ये तीनों प्रकार की मूर्तियां जो हैं अभी प्रैक्टिकल में कार्य कर रही हैं.
द फॉलोअर्स ऑफ विष्णु एंड द थर्ड आर द शैव दोज ऑफ द शैव कम्युनिटी हु आर नोन एज द शक्त कम्युनिटी. These three types of figures are presently functioning.
जो सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल करने वाली है, जिनके लिए झंडा रोहण में झंडा गान करते हैं, विश्व विजय करके
दिखलावे तब हो प्रभुपूर्ण हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा.
They are going to control over the entire world, for whom, while hoisting the flag. The flag song is sung. Our vow will be accomplished when we achieve victory over the world. Let our flag be held high. The beloved tricolor will achieve victory over the world.
वो तो कपड़ा दिखा देते, कपड़ा समझते. अब कपड़े का झंडा वो कैसे विश्व विजय करेगा? ये तो शरीर की तीन वस्त्र हैं. ये शरीर क्या है? वस्त्र है. इन वस्त्रों शरीर रूपी वस्त्र को आत्मा धारण करने वाली.
They show the flag made up of cloth. They consider it to be cloth. Now, how can a flag made up of cloth achieve victory over the world? Actually, these are the three bodies which are in the form of a dress. What is this body? It is a dress. The soul assumes this body form of dress.
आत्मा एक शरीर छोड़ती है और दूसरा शरीर लेती है. जैसे कोई एक कपड़ा बदलता है और दूसरा कपड़ा पहन लेता है. जैसे रंगमंच होता है तो एक ही व्यक्ति जो है चार चार पार्ट बजाता है.
The soul leaves one body and takes another body, just as someone changes one dress and wears another dress. Just like in a theater, a single person plays four roles.
एक तरह के कपड़ा पहनता है तो एक पार्टधारी, दूसरे तरह का कपड़ा पहनता है तो दूसरा पार्टधारी, तीसरे तरह का कपड़ा पहनता है तो तीसरा पार्टधारी. ऐसे ही आत्मा भी पार्टधारी है जन्म जन्मांतर.
When he wears one type of dress, he is one type of actor. When he wears another type of dress, he is another actor. When he wears a third type of dress, he becomes the third actor. Similarly, even the soul is an actor of numerous births.
तो ये तीन शरीर रूपी वस्त्र हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर. तीनों वस्त्रों का कार्य अभी प्रैक्टिकल में चल रहा है. और किसी युग में भगवान नहीं आता.
Well, these are the three body form of dress, Brahma, Vishnu and Shankar. The task of all the three dresses is practically going on now. God doesn't come in any other age.
त्रिमूर्ति सेवक तीन मूर्तियों को लेकर के सिर्फ कलयुग के अंत में जब एटम बम बन जाते हैं, इस पुरानी सृष्टि का विनाश होना होता है, तब ही आता है.
त्रिमूर्ति शिव कम्स विद थ्री मूर्तीज फिगर्स ओनली एट द एंड of the Iron Age, when atom bombs are prepared and the destruction of the old world is to take place.
आता है तब भी एटमिक एनर्जी तैयार होती है और जाता है तो भी एटमिक एनर्जी विस्फोट होती है और काम पूरा हो जाता
है. At the time when he comes, the atomic energy is created. And even when he goes, explosion of the atomic energy takes place and the task gets accomplished.
तो तीन मूर्तियों के लिए 100 साल के संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में 30-35 साल तीनों मूर्तियों के लिए बटे हुए हैं कार्य के लिए. ब्रह्मा के 30-35 साल तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा था 68-69 में 18 जनवरी को तभी 33 साल पूरे हो गए.
इन द 100 ईयर्स ऑफ द कॉन्फ्लुएंस एज, इन द ऑस्पिशियस कॉन्फ्लुएंस एज, 30-33 ईयर्स आर डिवाइडेड अमंग द थ्री फिगर्स. द 30-33 ईयर्स ऑफ ब्रह्मा गॉट कंप्लीटेड व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी ऑन 18 जनवरी 1968-69.
शंकर की तीसरी मूर्ति के 30-33 साल वो भी पूरे हो गए, माने 66-67 साल पूरे हो चुके.
The 30-33 years of the second figure, Shankar, also got completed. In other words, 66-67 years have got completed.
अब तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने का थोड़ा अंतराल का टाइम रहा हुआ है, उसको भी 3-4 साल में प्रत्यक्ष होगा.
Now the time, that is the interval for the third figure to get revealed is remaining. Even that figure has to get revealed in the 3-4 years.
दो मूर्ति पार्ट हो गया बोल रहे ना, लेकिन शंकर का तो प्रैक्टिकल में स्थापना के रूप में हुआ, विनाश के रूप में.
Someone said, Baba, you said that the part of the two murtis is over, but the part practically played by Shankar was in the form of establishment and not in the form of destruction.
स्थापना के रूप में ब्रह्म कुमारी यीशु विश्वविद्यालय में जो ब्राह्मण तैयार हुए हैं, उन ब्राह्मणों को ज्ञान बाण मार मार करके और उनको उनके मनोबल को डाउन करने का काम नहीं हुआ, अनिश्चय बुद्धि बनाने का काम नहीं हुआ.
बुद्धि से गहरा.
Didn't the act of continuously striking arrows of knowledge and lowering the self-esteem of the ones who have become Brahmins in the Brahma Kumari's godly university take place? Didn't the task of bringing them into uncertainty take place? Someone said it was attacking intellectually.
कोई भी काम पहले सूक्ष्म में होता है, फिर स्थूल में होता है. मकान बनाया जाता है तो पहले बुद्धि में खाका आता है, फिर स्थूल में कागज में खाका खींचा जाता है.
Any work first takes place in a subtle manner, then it happens physically. When a house is built, initially the sketch comes in the intellect, then it is physically sketched out on the paper.
वो थोड़ा सूक्ष्म रूप और स्थूल हुआ, फिर प्रैक्टिकल में मकान प्रैक्टिकल में बना दिए जाते, तो तीन आयाम हुए कि नहीं. तो ऐसे ही हर मूर्ति का जो कार्य है वो तीन रूपों में चलता है.
At that time, that subtle form becomes a little more apparent. Then, in practical, the house is built. In that case, there are three dimensions, isn't it? Similarly, the task of every figure works in the three forms.
शंकर का भी कार्य जो है वो कार्य संपन्न हो चुका, खाका तैयार हो गया. वो खाका जो है ब्राह्मणों की संगीत दुनिया में विस्फोट करने वाला है.
Even the task of Shankar has got completed. The outline has become ready. That outline is going to explode in the confluence age of the Brahmin world.
क्या इसलिए मुरली में बोला है, बड़े से बड़ा बम है परमात्मा बम.
Therefore, it is said in the Murli that the biggest bomb is a Paramatma bomb, the bomb which will lead to the revelation of the Supreme Soul.
ब्रह्मा परमात्मा के रूप में नहीं गाया हुआ है, विष्णु भी परमात्मा के रूप में नहीं गाया हुआ है. परमात्मा के रूप में एक ही हस्ती है जिसे शंकर कहा जाता है.
Brahma is not famous in the form of Supreme Soul. Even Vishnu is not famous in the form of Supreme Soul. There is only one personality who is famous in the form of Paramatma, the Supreme Soul, who is known as Shankar.
जिसका आदि और अंत नहीं है. शास्त्रों में एक ही देवता है जिसका जन्म नहीं दिखाया जाता और जिनका मृत्यु नहीं दिखाया
जाता. Who doesn't have a beginning or an end? In the scriptures, there is only one deity whose birth and death is not shown.
कृष्ण का जन्म भी दिखाया जाता है, मृत्यु भी दिखाई जाती है. ब्रह्मा के लिए भी बोला है शास्त्रों में, ब्रह्मा 100 वर्ष की आयु में मृत्यु रूप में खलास हो जाता है.
Krishna's birth is also shown and death is also shown. Even for Brahma, it is said in the scriptures that at the age of 100 years, Brahma dies from this mortal land.
वो भी खराब हो जाता है. वो सबसे नीचे का कपड़ा है, विष्णु बीच का कपड़ा है और सबसे ऊपर की तरफ के में शंकर की मूर्ति है.
Even he, Dada Lekhraj, dies. He is the lowest cloth in the Indian flag. The middle cloth represents Vishnu, and at the topmost level is a figure of Shankar. और
तीसरा मूर्ति से और भी कुछ होगा, माना
प्रैक्टिकल कार्य, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल कार्य जो है वो विष्णु के द्वारा होता है.
लेकिन ज्ञान तो
वैष्णव संप्रदाय जो है वो अपने को बहुत स्वच्छ समझते.
Someone asked, Baba, does something more also get accomplished through the third figure? The practical task is accomplished through Vishnu. The Vaishnava sect consider themselves as the cleanest.
कहते हैं कौन से संप्रदाय के? अरे हम वैष्णव संप्रदाय के. हमारा खान पान रहन सहन सारा उच्च कोटि का है.
If someone asks them, of which cult are you? They will say, अरे we are of the Vaishnava sect. Our eating habits, way of life, etc. are all of high class.
माना जो शंकर के थ्रू ज्ञान का बीज चारों तरफ सारी दुनिया में फैलाया जा रहा, उसका प्रैक्टिकल करेगा,
प्रैक्टिकल स्वरूप.
लेकिन उसमें अलग ज्ञान नहीं रहेगा ना?
नहीं, ज्ञान तो वो ही रहेगा. अच्छा, लेकिन उसमें शुद्धता ज्यादा होगी, मिक्सरिटी नहीं होगी मन मत.
Someone said that is they will bring the seed of knowledge which is being spread in the entire world through Shankar into practical, its practical form. Someone said, but the knowledge will not be different, will it? No, the knowledge will be the same, but there will be more of purity in it, mixture of their own opinion or of human opinion will not be there.
या मनुष्य मत की मेच्योरिटी जो है जैसे ब्रह्मा के द्वारा सुनाए हुए ज्ञान में हुई, या जैसे शंकर के द्वारा सुनाए हुए ज्ञान में, वो रुद्रगण जो है वो 108 रुद्रगण जो रुद्रमाला में गाए हुए हैं वो 108 नंबर बार है.
मिक्सचर ऑफ ह्यूमन ओपिनियन विल नॉट बी देयर जस्ट एज इन द नॉलेज नरेटेड बाय ब्रह्मा और इन द नॉलेज नरेटेड बाय शंकर द 108 Rudragan, that is the group of the Rudra, Shankar, whose praises are sung in the rosary of the Rudra, are number wise.
वो बारह बारह के नौ ग्रुप से हैं, नौ धर्मों से आए हुए. वो एक से एक श्रेष्ठ हैं और एक से एक भ्रष्ट कर्म करने वाले, लेकिन हैं पावरफुल आत्मा है दुनिया की.
There are nine groups of 12 each who have come from the 9 religions. They are superior to one another, and also there are those that perform the worst deeds number wise, but they are powerful souls.
वो 108 बीज हैं दुनिया के जिनमें सारी दुनिया समाई हुई है. इसलिए शास्त्र में आया हुआ है कि जब सारी धरती गर्त में जा रही थी तो एक नाव बनाई गई और उसमें दुनिया के सभी बीज, खास खास बीज जो हैं, वो उस नाव में रख लिए गए.
बट दे आर पावरफुल सोल्स ऑफ द वर्ल्ड. दे आर द 108 सीड्स ऑफ द वर्ल्ड इन विच द एंटायर वर्ल्ड इज मर्ज्ड. देयरफॉर इट हैज कम इन द स्क्रिप्चर्स दैट व्हेन द एंटायर वर्ल्ड वाज गोइंग इनटू द डिच अ बोट वाज प्रिपेयर्ड एंड ऑल द स्पेशल सीड्स of the world were kept in that boat.
ताकि सृष्टि कहीं खलास न हो जाए, कम से कम बीज तो बने रहेंगे। तो ये 108 बीज रूप आत्माएं हैं जिनका गायन हर धर्म में किया जाता है।
सो दैट द वर्ल्ड डजंट कम टू एन एंड एट लीस्ट द सीड्स विल बी सेफ। So these are the 108 seed form of souls who are famous in every religion.
हर धर्म में वो माला स्मरण की जाती है 108 मणकों, 108 श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जो श्रेष्ठ आत्माएं अभी गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही
है। That rosary of 108 beads is remembered, rotated in every religion. They are the 108 superior souls who are currently performing their task in an incognito way.
ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान दाता भी गुप्त, ज्ञान लेने वाले जो पांडव बच्चे हैं वो भी गुप्त, उनका धन पद मान मर्तबा दान दान धर्म जो भी कर रहे हैं वो सब इस समय गुप्त रूप में।
The giver of knowledge who narrates the knowledge is also incognito. The Pandav children who take the knowledge are also incognito. Their donations, posts, status, position, their offerings and whatever they are donating are all going on in an incognito form.
गुप्त में ज्यादा ताकत होती है, प्रत्यक्ष हो जाती है तो उसमें ज्यादा ताकत नहीं होती। इसलिए शास्त्रों में भी लिखा हुआ है तुलसीदास ने, योग जुगुत जब मंत्र प्रभाव और फल है तब ही जब करिए दुराव। उसको जितना हम गुप्त रखेंगे उतना ज्यादा उसमें ताकत है।
That what is incognito has more power in it and that what gets revealed doesn't have power. Therefore, it is also written in the scriptures by Tulsidas.
योग जुगुत जब मंत्र प्रभाव और फल है तब ही जब करिए दुराव।
Defects of yoga, that is remembrance, yukti, that is tacts, tap, that is penance, mantra, that is chanting, will bring out fruits only when they are done incognito. As much incognito we keep it, that much power it does have.
दान है, हम दान करें, आजकल लोग क्या करते हैं, दान करते हैं और दूसरी तरफ प्लेट लगवा देते हैं, हमने इतना दान किया। वो नई दुनिया की स्थापना नहीं कर सकता वो दान।
One has something to donate, and if they donate it, nowadays what do people do? On one side they donate, and on the other side they hang a plate. We have donated so much. That donation can't establish a new world.
वो अल्पकाल का सुख देगा दुनिया को, सदाकाल का सुख नहीं दे सकता। ईश्वर आकर के जो हमें दान करना सिखाता है वो ऐसा दान करना सिखाता है जो सिर्फ ईश्वर को ही दिया जाए, ईश्वर ही लेने वाला हो और उसके जो फर्स्ट क्लास बच्चे हैं वो ही उसको देते।
इट विल गिव टेम्पररी हैप्पीनेस टू द वर्ल्ड, इट कांट गिव एवरलास्टिंग हैप्पीनेस। द डोनेशन विच गॉड कम्स एंड टीचेस अस इज सच दैट इट शुड बी पर्टिकुलरली गिवन टू गॉड एंड गॉड इज अ वन हु टेक्स इट and particularly it is his first class children who give it to him.
इसलिए नरसिंह ने ईश्वर अर्पण
कहते हैं लेकिन करते किसको है? करते तो पापियों को है।
Someone said, therefore it is said in the path of devotion, ईश्वर अर्पणम, making an offering to God. They say ईश्वर अर्पणम, but whom do they offer? They in fact donate to the sinful people.
भिखारी लोग आते हैं या साधु संन्यासी दरवाजे पर आते हैं तो दे दिया। अब वो बाहर जाकर के चाहे शराब पीते हो कौन देखता है, और पीते ही है। भीख मांगने वाले ज्यादातर आज की दुनिया में सारे ऐसे ही हैं।
When the beggars come or when the saints and ascetics come to the doorstep, they offer something to them. Then, in case if they go and drink alcohol, who sees that? And it is sure that they drink. In today's world, the beggars are mostly like that only.
भगवान इस सृष्टि पर बेगर के रूप में आता है जिसका नाम दिया हुआ है शंकर। भर दे झोली भर दे.
Even God comes in this world in a form of a beggar, whose name is given as Shankar. Fill our bag, fill our bag.
मांगना सिखाता नहीं है, खुद मांगता भी नहीं है, लेकिन नियम ऐसा बताया हुआ है कि इस ईश्वरीय सेवा के कार्य में जो जितना सहयोग करता है वो अपने लिए जन्म जन्मांतर के लिए कर रहा
है. He neither teaches to ask, nor does he himself ask. But the rule is that in the task of this godly yagya, as much assistance one gives, he does it for himself, for his numerous births.
कोई दूसरे के लिए नहीं कर रहा है, या भगवान के लिए कर रहा हूँ ऐसा भी नहीं, क्योंकि भगवान तो निराकार है, वो परम धाम में तो ले नहीं जाएगा, वो तो निराकारी लोग का रहने वाला है.
He doesn't do it for someone else, or it isn't even so that he does it for God, since God is incorporeal and he will not at all take it to the supreme abode. He is but the resident of the incorporeal land.
वो इस सृष्टि पर जिन हस्तियों में आता है वो खुद ही इतनी पुरुषार्थी है कि एक जन्म में रंक से राजा बनने की उनमें ताकत.
In the personalities in whom he comes in this world, they themselves are such effort makers that they have the power of becoming kings from paupers in one birth itself.
जैसे बाबर का मिसाल है, साधारण सिपाही था और साधारण सिपाही से क्या बन गया, भारत का सम्राट बन गया.
Just as there is the example of Babur. He was an ordinary soldier, and what did he become? From an ordinary soldier, he became the Emperor of India.
Victoria का वजीर स्ट्रीट लाइट में बैठ करके पढ़ाई पढ़ता था, पढ़ाई पढ़ करके इतना ऊंचा बन गया कि वो वजीर बन के बैठ गया. विक्टोरिया को भी चला रहा है, ऐसा करो ऐसा करो वैसा करो ऐसे करो.
The minister of Queen Victoria used to study in the street light. After studying, he became so great that he became the minister of Victoria. He is even guiding Victoria. Do like this, do like that.
So, Ramakrishna ki atma hai, to khud hi itni purusharthi hai. Wo kisi ka kyun legi? Unme to khud hi itna swabhiman bhara hua hai. Wo kisi se kuch lene wali nahi hai, balki sabko dene wali. Wo badi ki badi bankers hai.
In fact, the souls of Ram and Krishna are themselves such effort makers. Why will they take anything that belongs to others? There is so much of self-esteem filled in them that they are not the ones who will take anything from others. Instead, they are the ones who give others. They are the biggest bankers.
भगवान के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, इसलिए अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता.
They are walking on the path shown by God, therefore
अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता.
Means a single person cannot achieve a great task.
मना अकेले व्यक्ति की धन संपत्ति से स्वर्ग की दुनिया स्थापन नहीं हो सकती.
In other words, with the wealth and property of a single person, the world of heaven cannot be established.
इसलिए सब का कणा दाना का सहयोग लेकर के और नई दुनिया की स्थापना करके चले जाते
हैं. Therefore, by taking the assistance of everyone's penny, he establishes the new world and goes.
ये बात में बनते हैं, नर से नारायण बनते हैं, नारी से लक्ष्मी बनते हैं.
They become deity souls. They become Narayan from a man and Lakshmi from a woman. Om Shanti.